ओम शांति। आज का टॉपिक दिया गया है स्पिरिचुअल मदरिंग यानी रूहानी मातृत्व। मां एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें इस शब्द को ही बहुत मीठा और प्यारा बना दिया है। इतिहास और कहानियों से हम जानते हैं कि स्त्री भी एक ऐसी व्यक्तित्व है जिसमें निस्वार्थ प्रेम भाव, दया भाव, उदारता, सहनशीलता और धैर्यता उसमें स्वतः ही होती है। उसको इन चीजों की सीखने की दरकार नहीं, इसलिए वह एक मां का दायित्व बहुत अच्छे से निभा सकती है। तो हम अभी बात करेंगे बायोलॉजिकल मदर यानी लौकिक मां। लौकिक मां अपने बच्चों को संभालती है, केयर करती है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनके शारीरिक और मानसिक विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। पर मां का जो बच्चों से प्यार है उसके साथ साथ उसमें मोह भी होता है, तो मोह की वजह से दुख का कारण भी होता है। तो यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक स्टोरी। एक स्कूल में टीचर अपने बच्चों को एक डेमोंस्ट्रेशन देते हैं जिसमें कैसे एक ककून से तितली में परिवर्तन होता है, माने कि कैसे एक कैटरपिलर तितली में, बटरफ्लाई में परिवर्तन होता है। तो सब स्टूडेंट्स देखते रहते हैं कि जब तितली बाहर निकलती है ककून से तो उसको बहुत तड़प होती है। तो एक स्टूडेंट को तड़प देख नहीं पाता और उस ककून को तोड़ देता है और वो तितली आसानी से बाहर तो आ जाती है पर थोड़ी वो उड़ नहीं पाती और थोड़ी देर के बाद वो मर जाती है। तो मास्टर जी उस स्टूडेंट को बताते हैं कि भाई एक प्रकृति का नियम है, जब भी तितली ककुन से बाहर निकलती है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है। जब वो संघर्ष से गुजरती है तो उसके पंखुड़ियों में बल आता है, वो फिर उड़ पाती है। तो आजकल का जो जमाना है, दोनों पेरेंट्स काम पर जाते हैं तो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, तो अगर बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ काम की जिम्मेदारी में अगर संतुलन होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चों की जिम्मेदारी आजकल केयरटेकर्स के पास चली जाती है। बड़े सिटी में आजकल देखते हैं हम लोग केयरटेकर होम्स होते हैं जहां पे बच्चों को छोड़ देते हैं। भले ही वहां पे बच्चों का शारीरिक विकास हो सकता है, परंतु मानसिक विकास जो एक माँ कर सकती है वो एक केयरटेकर नहीं कर सकती, क्योंकि जो माँ की ऊब है, जो माँ की गर्मास है, माँ की जो टचिंग है, माँ की जो फीलिंग्स होती है, वो एक माँ ही दे सकती है, केयरटेकर नहीं दे सकती। इसलिए आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चों में भले ही वो इंटेलिजेंट है परंतु मेंटली वो काफ़ी वीक रहते हैं, कोई भी सिचुएशन वो जल्दी से फेस नहीं कर पाते, उनमें डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। कोई भी अगर सिचुएशन आई, आजकल हम लोग देखते हैं कि तुरंत वो लोग आत्मघात यानी जीवघात के बारे में भी सोचते नहीं, तुरंत जीवघात कर लेते हैं। हर दिन हम लोग पढ़ते हैं कहीं पर भी कोई स्ट्रेस है, कहीं फेल हो गए स्टूडेंट्स, कहीं समझो 10वीं कक्षा में फेल हो गए तो तुरंत सुइसाइड, कहीं किसी ने काम की जगह पे टॉर्चर कर दिया तो तुरंत सुइसाइड। तो ये आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। इतिहास से हम देखते हैं कि माँ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है बच्चों को समाज में एक बड़ा दायित्व देने में। तो महाराष्ट्र के मराठा के साम्राज्य के एक राजा थे शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का बचपन भी बहुत संघर्ष से गुजरा, उनकी माँ थी जीजा माता, तो जीजा माता का भी जीवन बहुत संघर्षमय रहा। तो उस समय उत्तर में थी क्या बोलते हैं इनके मुगल का साम्राज्य और दक्षिण में था हैदराबाद में वो भी मुस्लिम साम्राज्य था। तो इनको एक हिंदू साम्राज्य और स्वराज्य बनाना था, तो शिवाजी महाराज की माँ ने उनको ट्रेनिंग दी उस तरह की और उन्होंने बहुत संघर्ष से उनको गुजारा और एक बहुत बड़े राजा बने शिवाजी महाराज। ऐसे ही हम इतिहास से ये भी देखते हैं कि एक धावक थी अमेरिका की, तो उस धावक का क्या की भी हिस्ट्री ऐसी है कि जब वो 5 साल की थी तो उसको एक फीवर हो गया था, स्कारलेट फीवर, और उससे पोलियो भी हो गया था। तो पोलियो उस बीमारी से कम 12 साल तक जूझती रही। तो उसका जो दायां पैर है, तो दायां पैर उसका वीक हो गया था। तो उसकी माँ ने भी, वो अमेरिका की थी धावक, और एक बहुत ही छोटे से कस्बे में रहते थे और जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। उसकी माँ उसे हर दिन उसको काफ़ी दूर जाना पड़ता था और उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो 12 साल तक उसने उसकी ट्रीटमेंट करवाई, उसकी मालिश करती थी पैर की, तो उसके पैर में बल आया। तो उसके बाद उसको एक ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट दिया गया था जिससे वो चल पाती थी। फिर उसने काफ़ी संघर्ष किया, एथलेटिक्स में काफ़ी आगे बढ़ी और 1950 के ओलंपिक्स में उसने भाग लिया, और उस समय तो जीत नहीं पाई, ब्रॉन्ज मेडल जीती, पर 1960 की ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल जीती तीन। तो इसमें भी माँ का बहुत बड़ा दायित्व था। तो इस तरह आजकल के माँ बाप ये सोचते हैं बच्चों के बारे में कि जो हम लोगों को जो नहीं मिला वो हमें हमारे बच्चों को देना है। तो बच्चों को एक कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, उन्हें अच्छा घर देंगे, अच्छी गाड़ी देंगे, अच्छे स्कूल में रखना है, उनको एसी में रखना है। तो बच्चों में जो एक संघर्ष होना चाहिए वो हो नहीं पाता, इसलिए फिर वो बच्चे उड़ नहीं पाते। तो हमें उन बच्चों के पैर नहीं बना है, हमें उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि वो स्वयं खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो ये है लौकिक माँ के बारे में। तो दूसरा है सोशल मदरिंग। सोशल मदरिंग भी एक बहुत ऊंचा कार्य है। तो भले ही इसमें एक सोशल मदर और माँ के बीच में खून का रिश्ता नाता ना हो, परंतु उस माँ में वो मातृत्व का भाव होता है। उस भाव से वो उन अनाथ बच्चों का सहारा बनती है, उन्हें निस्वार्थ प्यार देती है। तो सोशल मदरिंग के नाम सुनते ही हमारे सामने एक चित्र आ जाता है आंखों के सामने, और वह चरित्र है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा ने भी अनेक अनाथ बच्चे जो बेसहारा बच्चे थे उनकी सहारा बनी, और उन्हें मातृत्व के प्यार से, ममता से भरपूर प्यार दिया, पालना की। तो उन्हें वो माँ का टाइटल मिला जो एक काफ़ी ऊंचा टाइटल है, मदर टेरेसा। ऐसे ही आजकल काफ़ी सोशल काम होते हैं, सोशल मदरिंग के दायित्व काफ़ी लोग निभा, जिस किसी में भी यह भाव है मातृत्व का तो ये सोशल मदरिंग का काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही है रूहानी मातृत्व। तो रूहानी मातृत्व में आत्मा यानी स्पिरिट, जो स्पिरिट की पालन पोषण करते हैं उसको रूहानी मातृत्व कहा जाता है। तो एक बाइबल में एक लाइन मेंशन की गई है, द होली स्पिरिट मदर्स अस एंड नर्चर्स अस टुवर्ड्स ट्रूथफुलनेस। यानी एक पवित्र आत्मा माँ का दायित्व भी निभाती है और हमारा पालन पोषण भी करती है, जो हमें सत्यता की ओर लेके जाता है। तो ऐसे रूहानी मातृत्व का काम अनेक धर्म पिताओं ने भी निभाया है, और हमारे महाराष्ट्र के एक संत है, संत ज्ञानेश्वर। तो उन ज्ञानेश्वर को ज्ञानेश्वर माउली कहा गया, तो माउली यानी माँ। तो उन्होंने भी सारे विश्व और विश्व के आत्माओं के प्रति, कल्याण के प्रति एक पसायदान में प्रार्थना की थी। तो आत्मा का यथार्थ अर्थ हमें परमात्मा माँ ने ही इस धरा पे आकर बताया। तो भले ही हम लौकिक माँ को एक माँ का दर्जा देते हैं और उसकी महिमा की माँ का दर्जा देकर, परंतु यहाँ पे स्वयं परमात्मा माँ हमारी माँ बनकर पालना करते हैं, और यह पालना हमें ब्रह्मा माँ द्वारा देते हैं। तो एक 3 फरवरी 1988 की मुरली में शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के बारे में कहा, बच्चे तो माँ बाप दोनों के होते हैं, परंतु फिर भी माँ का जो विशेष स्नेह बच्चों के साथ होता है, क्योंकि बच्चों के पालना के निमित्त माँ बनती है, और बाप समान बनाने वाली निमित्त भी माँ होती है। तो माँ का जो है स्नेह इसीलिए माँ की ममता का गायन है। तो माँ की जो ममता है यह शुद्ध ममता है, इस ममता में कोई विकार नहीं, कोई मोह नहीं। तो जहाँ मोह है वहाँ परेशानी होती है, और जहाँ शुद्ध ममता है कहो या स्नेह कहो, और अगर वो होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होगी, वो परेशान नहीं होती। तो इस तरह ब्रह्मा माँ ने बड़ी माँ के रूप में हम बच्चों की पवित्रता के प्यार से पालना की। तो जो समाज नारी को कमजोर समझता था, उस समाज की सशक्तिकरण के लिए बाबा ने पूरी जिम्मेवारी माताओं और बहनों के हाथ में दी। और इस तरह उनकी महिमा की, वंदे मातरम और भारत माता करके उनकी महिमा की, बच्चों उन माताओं की।
परिवर्तन की मंगल बेला, परिवर्तन की मंगल बेला, शिव ये है अवतरण किया।
यज्ञ में मां का दायित्व मम्मा ने निभाया, मम्मा निमित्त बनी। तो मम्मा में ऐसी खासियत थी जो मां का दायित्व निभा सकती, तो मम्मा की मां ने भी उन्हें मां कहकर बुलाया। तो मम्मा में रूहानियत थी, गंभीरता थी, उसके साथ साथ सत्यता की ताकत थी और उस हर्षित मुक्ता भी थी। तो मम्मा जो है मुरली को पढ़ती थी, मुरली को पूरी तरह अपने अंदर समाती थी, फिर स्वरूप बनकर बच्चों को सुनाती थी। तो ज्ञान गर्भ में तड़पते हुए बच्चों को जब वो मुरली सुनती थी तो उनको नवजीवन मिलता था। तो इस तरह ये तीन मातृत्व के बारे में मैंने बताया, और अभी हम चर्चा करेंगे कैसे ये मातृत्व निभा सकते हैं कैसे। तो माँ अपने बच्चों की अलग अलग स्टेजेस में पालना करती है। एक बाल्यपन की स्टेज होती है, उसके बाद में किशोरपन और युवा अवस्था में। तो बाल्य स्टेज में कैसे, तो माँ अपने बच्चों को पहले जगाती है। तो बाबा ने भी माँ के रूप में हमें ज्ञानी तो आत्मा कहकर अज्ञान नींद से जगाया। रोज सवेरे अमृत वेले मेरे लाडलो जागे जागो कहकर हमें जगाया, फिर भी हम आलस्य अलबेलापन के नींद में सोए रहे, फिर कहा अब नहीं तो कब नहीं। तो इस तरह हमें भी इस अज्ञान नींद से जागना है, इस कुंभकर्ण की नींद से जागकर संपूर्ण बनना है समय से पहले। फिर बाद में माँ बच्चों को सुलाती भी है लोरी कहकर। तो ब्रह्मा माँ ने भी हमें प्यार के आंचल में ढककर गोद में लेकर और रोज रात में राजकुमार कहकर सुलाया और लोरी दी, पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, ज्ञान मूरत बनो, गुण मूरत बनो और सुख शांति स्वरूप बनो। तो यार लोरी अगर हम रोज रात में सोने से पहले अगर सुन के सोएंगे तो यह जो लोरी हमारे अर्ध जागृत मन में जाएगी और हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ रहेगी। तो जो 8 घंटे की नींद होती है हम 4 घंटे में पूरी कर सकते हैं और हमारी जो अमृत वेला होती है वो बहुत पावरफुल हो सकती है। उसके बाद जगाने के बाद एक बाल्यावस्था में माँ अपने बच्चों की मालिश करती है। तो हम जो आत्मा जन जन्मांतर से प्यासी थकी हुई और सच्चे प्यार की तलाश में भटक कर थक गई और मुरझा गई, तो ऐसे हम आत्माओं को जब ब्रह्मा माँ प्यार की मालिश देती है तो मालिश से एक फ्रेशनेस आती है और उसके बाद एक निखार आती है और एक बल भरता है। तो इस तरह हमारी जो प्यास थी वो बुझा दी। मालिश के बाद बच्चों को घुट्टी देते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स को पूरा घिस घिस के, बादाम को घिस घिस के पूरा उसका पेस्ट बनाते हैं, उसे चटाते हैं। ऐसे भी हमें ज्ञान के जो पॉइंट्स है, मुरली के जो पॉइंट्स है, उसको घिसना है, मंथन करना है, पूरा घोटना है और घोट के उसका स्वरूप बनना है। तो कहते भी हैं ना, अपनी घोट तो चढ़े नशा। तो इस तरह वो घुटी चाटनी है और उसके बाद माँ हमें नहलाती है। तो लौकिक में भी माँ नहलाती और साबुन से साफ करती है, तो यहाँ पर हमें माँ नहलाती है और लक्ष्य सोप से साफ करती है। तो माँ हम जो आत्माएं माया के धूल में लिधड़कर अपवित्र बन गई और मैली हो गई, तो ऐसी आत्मा गंगा स्नान से पावन नहीं बन सकती, इसको ज्ञान स्नान से पावन बना सकते हैं और लक्ष्य स्वरूप से हमें इसकी सफाई करनी है। तो हमारा लक्ष्य क्या है इसके बारे में भी एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूं। जो हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनको एक स्टूडेंट पूछता है कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनना है। तो उन्होंने कहा जो आप बनना चाहते हो उसे एक पेपर पर लिखो, उसके बारे में सोचो, स्वप्न देखो, फिर उसके बारे में पक्का सोचो, बार बार सोचो, और जो सोच रहे हो उसको प्रैक्टिकल कर्म में परिवर्तन करो, तो आपका महान लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ड्रीम एंड ड्रीम, थिंक एंड कन्वर्ट योर एक्ट इंटू थॉट्स इंटू एक्शन, एक्ट एंड एक्ट एंड देन यू बिकम। तो ऐसे हमारा लक्ष्य क्या है ब्राह्मण जीवन में, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। तो इसके लिए हमें भी छोटे छोटे लक्ष्य सिद्ध करने होंगे। तो जैसे आज मेरा लक्ष्य है कि मैं सारा दिन सबको आत्मा देखूंगा, मैं आत्मा, मेरे सामने वाले भी आत्मा, और इसके ऊपर हमें बार बार अटेंशन देना है, इसके इसका अभ्यास करना है। तो दूसरा ऐसे भी और कुछ सम्मान ले सकते हैं कि आज सारे दिन मुझे मौन में रहना है, तो इसके बारे में अंतर मन से इसके बारे में अभ्यास करना है, इस पर अटेंशन देना है। ऐसे कई सारे सम्मान ले सकते हैं और उसको अपना लक्ष्य बना सकते हैं। तो ये लक्ष्य को भी धीरे धीरे बढ़ाता जाना है, पहले एक दिन का लक्ष्य, फिर तीन दिन का, फिर सात दिन का, फिर 21 दिन का लक्ष्य, 90 दिन का लक्ष्य। जब ऐसे हम इस लक्ष्य को सिद्ध करते जाएंगे, छोटे छोटे लक्ष्य को, तो हम इसका स्वरूप बनते जाएंगे और ये हमारे दैवी संस्कार बनते जाएंगे। तो इस तरह है, हमें लक्ष्य को सिद्ध करना है। और स्नान के बाद मां पकड़कर चलाना भी सिखाती है। तो हमें मां का जो हाथ मिला है वो श्रीमद का हाथ है, तो हमें श्रीमद का हाथ पकड़कर चलना है। एक सेकेंड, इसके बारे में हाथ पकड़कर कदम पर कदम रखकर चलना है और अपने कदम को श्रेष्ठ, हर कर्म को श्रेष्ठ आत्मा समझकर करो तो हर कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो श्रीमद रूपी हाथ पकड़कर हमें हम चलेंगे और दौड़ेंगे, और उसके साथ 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 हमें उमंग उत्साह के पंख भी लगाने हैं। तो पंख लगाएंगे तो उड़ेंगे, तो जो भी परिस्थिति आएंगी तो उस परिस्थिति को आसानी से पार कर सकेंगे। तो इसके बाद है ड्रेस। तो ड्रेस के कैसी, माँ अपने बच्चों को अलग अलग मौसम और अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से ड्रेस देती है। तो यहां पर भी हमें ड्रेस मिलती है अनेक अनेक टाइटल्स के स्वरूप के अनुसार ड्रेस मिलती है। कभी कभी हमें ड्रेस मिलती है फरिश्ता चमकीला स्वरूप की ड्रेस, और उसके बाद हमें कभी मिलती है विश्व कल्याणकारी की ड्रेस, और उसके बाद मिलती है मास्टर सर्वशक्तिमान की ड्रेस। तो अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग कर्तव्य के अनुसार हमें ड्रेस को धारण करना है। तो माँ हमें इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस देती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पुरानी ड्रेस है उसको छुपा कर रखते हैं और माँ की आंखों को चुका कर हम वो लोग ड्रेस पहन लेते हैं। फरिश्ता चमकीली ड्रेस को छोड़कर हम पहनते हैं मिट्टी की ड्रेस यानी देहभान की ड्रेस, उसके बाद गंदे ड्राग की ड्रेस यानी लोगों के अवगुण देखना और उन अवगुणों को धारण करना, और उसके बाद हम लोग पहनते हैं बहुत ही एक डेंजरस ड्रेस है खून की ड्रेस, जो मतलब बार बार काम विकार में गिरना और आत्मघात करना, और उसके बाद गंदे बदबू की ड्रेस यानी लो हमारे शरीर के पदार्थों और शरीर के संबंध में जी अटकाना, और उसके बाद देखते हैं चमड़ी की ड्रेस यानी क्रिमिनलाइज चमड़ी को देखना। तो इन ड्रेसेस को क्या करना है, हमें इन ड्रेसेस को पूरी तरह से जला देना है, जलाकर राख करना है और उसको सागर में स्वाहा करना है। तो ड्रेस के बाद है श्रृंगार। तो माँ भी बच्चों का श्रृंगार करती है, तो हमारा भी श्रृंगार करती है, माथे पर तिलक लगाती है या बिंदी लगाती है, तो यह है आत्मस्मृति की बिंदी। तो स्मृति क्या होगी, हम भी एक पवित्र आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, शांत आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। उसके बाद गले का हार यानी हमें मुख से जो भी बोलना है पवित्र बोल ही बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठे मीठा बोलना है। और बाद में कान का श्रृंगार, तो हम कानों से जो भी सुनेंगे वो पवित्र बातें ही सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। और हाथों का श्रृंगार, हाथों में कंगन, जो भी हाथों से कर्म करेंगे वो पवित्र श्रेष्ठता की स्थिति में ही कर्म करेंगे, और पैरों का श्रृंगार, पैरों में कड़े, यानी जो भी हम कदम बढ़ाएंगे वो औरों को पवित्रता की ओर बढ़ाने की ही कदम बढ़ाएंगे, पवित्र करने के आगे ही कदम बढ़ाएंगे। तो इस तरह है, पूरा शरीर का श्रृंगार करती है। श्रृंगार के बाद है अपना भोजन, खान पान। तो माँ अपने बच्चों के शारीरिक और शारीरिक विकास के लिए खान पान का बहुत ध्यान रखती है। तो हमारा भोजन है ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा भोजन किसी को भी नहीं मिलता है, देवता भी इस भोजन के लिए तरसते हैं। तो यह भोजन बाबा की याद में बनाया जाता है, तो इस भोजन में बहुत ताकत होती है। तो अपना मानसिक और शारीरिक विकास के लिए यह बहुत काम करता है। यह भोजन दवा के साथ साथ दुआ का भी काम करता है। तो इस तरह ब्रह्मा भोजन का महत्व है। तो खान पान भी है, तो अलग अलग टाइप के जूसेस भी हमें बाबा ने पिलाया है। सोमरस पिलाते हैं, शुभी रस पिलाते हैं। तो इस तरह खान पान है। खान का पान के बाद एक्सरसाइज। तो माँ बच्चों को एक्सरसाइज भी कराती है, तो हमें भी एक्सरसाइज करना है। मन और बुद्धि की एक्सरसाइज है पांच स्वरूपों का दर्शन, और उसके बाद है चलना फिरना, वॉकिंग एक्सरसाइज। वॉकिंग एक्सरसाइज है चार धामों की यात्रा, उसके बाद तीनों लोकों की यात्रा। तो एक्सरसाइज से क्या होता है कि पूरे शरीर में लवचिकता आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो ऐसे मन और बुद्धि में भी लवचिकता आती है, तो हमारे मन को हम जहां चाहे, जिस स्थिति में चाहे, जितना देर चाहे टिका सकते हैं। तो यह एक्सरसाइज है मन और बुद्धि की। एक्सरसाइज के बाद है पढ़ाई। तो पढ़ाई बाबा कहते हैं इज ए सोर्स ऑफ इनकम। तो लौकिक में भी माँ अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला देती है, एडमिशन कराती है। तो यहाँ पर भी एक अनोखी स्कूल कम यूनिवर्सिटी कम कॉलेज है, वो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस कॉलेज में हमें डिग्री लेनी है, और वो डिग्री है अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की है। तो इस यूनिवर्सिटी से हमें ये डिग्री लेके ही निकलनी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो बाबा क्या क्या पढ़ाते हैं हमें, पूरे हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं, पूरे तीनों लोकों के बारे में बताते हैं, और हमारे सब्जेक्ट्स है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इन सब्जेक्ट्स में हमें संपूर्ण अनुभवी मूरत बनना है। जब हम अनुभवी मूरत बनेंगे तो फिर पास विथ ऑनर होंगे। तो हमारे पेपर्स क्या क्या हैं इस यूनिवर्सिटी में, हमारे कमी कमजोरियों के पेपर्स, विकार के पेपर्स, उसके बाद लास्ट में आता है मोह का पेपर। तो इन पेपर्स को भी हमें पार करना है। और घंटी कौन सी बजती है स्कूल में, यहाँ पे अचानक की घंटी बनती है, तो हमें एवर रेडी रहना है, क्योंकि अचानक की घंटी कभी भी बज सकती है। उसके बाद है पढ़ाई के बाद माँ अपने बच्चों को खिलाती भी है और खुद भी उनके साथ खेलती है। तो एंटरटेनमेंट, तो बाबा भी हमें एंटरटेन कराता है, अलग अलग टाइप के खेल दिखाते हैं। तो सृष्टि चक्र का खेल हमें बताया, और उसके बाद में बंदर मदारी के खेल के बारे में बताते हैं, और मिकी माउस के खेल के बारे में भी बाबा ने वर्णन किया है मुरली में। तो बाबा के साथ हम जाके सूक्ष्म वतन में खेल भी सकते हैं। तो उसके बाद बाबा हमें जू भी, एक अनोखा जू है बाबा का, जिसमें अलग अलग टाइप के प्राणी और पंछी है। तो पंछी कौन से हैं, जो पंछी चातक पंछी है अच्छे से उड़ जाते हैं, कुछ पंछी है जो उड़ना भी चाहते हैं और लटक के रहते हैं, और कुछ पंछी उड़ना ही नहीं जानते। उसके बाद बाबा ने हमें हत्ती के बारे में बताया। तो हत्ती की चाल चलनी है, तो हत्ती एक क्रस स्थिति में चलते रहता है। और उसके बाद हत्ती और ग्रह का भी बताया। तो ग्रह जो है माया रूपी ग्रह है, हत्ती को मतलब उसको हप कर लेता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें और वो जब हत्ती पुकारता है तो स्वदर्शन चक्र से उसको ग्रह को मारा जाता है। तो माया रूपी जो ग्रह है उसको हमें स्वदर्शन चक्र घुमाकर उसे भगाना है। और उसके बाद में बाबा ने सांप भी दिखाए, तो सांप का भी अलग अलग हमें बताया कि सांप को शेष सैया बनाकर उसके ऊपर सो जाना है बेफिक्र होके, या तो फिर उसको ऐसी सेज बनानी है जैसे कृष्ण सांप के ऊपर डांस करते हैं। तो इन विकारों पर जीत पाकर उस पर उसको स्टेज बनाकर उस पर डांस करना है। और उसके बाद मियाँ मिट्टू के बारे में बताया। तो तोते जैसे हमें कुछ भी रट के बोलना नहीं है ज्ञान के बारे में। और इसके बाद में इसका ऑपोजिट पता है भ्रमरी, भ्रमरी भू मू करती है। तो हमें ज्ञान का चिंतन करके औरों को भी ज्ञान के बारे में बताना है। और उसके बाद में बताया होली हंस के बारे में, बगुला और होली हंस। होली हंस सिर्फ यही मतलब जो श्रेष्ठ गुण है वही चुगता है, मोती चुगता है, और बगुला उसका ऑपोजिट है। तो इस तरह एक अनोखा जू है बाबा का, तो इस जू से हमें मुरली में रोज घुमाते रहते हैं। तो यह हो गया एंटरटेनमेंट के बारे में। उसके बाद है बच्चा बड़ा हो जाता है, हाँ शेर भी है, शेर तो मैं भूल गया। तो शेर के बारे में बाबा बताते हैं कि कागज का माया भी एक कागज का शेर है। उसके बाद बिल्ली भी है, माया बिल्ली के बारे में भी बाबा बताते हैं। और कोई प्राणी है, चूहे हैं, तो चूहा फूंकता है और बेहोश करके फिर अजगर अजगर निकल लेता है। बरोबर। और उसके बाद माँ बाप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी भी करनी होती है, तो यहाँ पे एक अनोखी शादी होती है। तो ब्रह्मा माँ हमारी सगाई शिव बाबा से कराते हैं और एक आशुक और माशुक की जोड़ी बन जाती है। माँ हमारे सारे गम लेकर हमें बेगमपुर का बादशाह बना देती है, तो माँ हमारे सारे बोझ लेकर हमें बेफिक्र बादशाह भी बना देती है। तो हमारी गलतियों को माफ भी कर देती है, हमें उसको उन गलतियों को समा भी लेती है और हमें सुधरने का मौका भी देती है। यह माँ हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। माँ हमें दैवी संस्कार भरती है, आसुरी संस्कार निकाल देती है। हर समस्या का समाधान किया, प्रेरणा दी, छत्र छाया बनकर तपने से बचाया। माँ ने निस्वार्थ प्यार लुटाया जो कोई भी दुनिया में माँ लुटा नहीं सकती। हर घड़ी हमारे कल्याण के बारे में सोचा। माँ आने दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता, जन्म दिया, ब्राह्मण बनाया, पालना दी, और हमें औरों को भी ऐसे बनाना है। तो यह जो ईश्वरी विश्वविद्यालय में कोई भी आत्मा हो, हर जो भी आत्मा बाबा के जितने ही करीब पहुंचता है उसमें ऑटोमेटिकली रूहानी मातृत्व का गुण आता ही है। तो हमने देखा है दादी दीदियों का जो दृष्टि है, उनके अनुभवों के खजाने, आदि रत्न, उनके बारे में जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें एक मातृत्व का प्यार ही मिलता है। बाबा का हर वो स्थान, चाहे मधुबन हो या कोई भी सेंटर हो, अगर उसके संपर्क में आते हैं तो हमें एक मातृत्व का प्यार ही मिलता है। तो इसके अनुभव ही हम भी हैं, हम जहां पे भी जाते हैं अगर सेंटर पे बता दे तो तुरंत वहां पे हमारा हर चीज का हमारा इंतजाम होता है, जो इतना आसान नहीं है दुनिया में कहीं पे भी। अगर किसी रिश्तेदार के भी घर में जाएंगे तो सोचेंगे वो क्यों आ गया, लेकिन हम कहीं पे भी सेंटर्स में जाएंगे तो तुरंत हमारे हर चीज का इंतजाम होता है। ये देश में हो, विदेश में, कहीं भी दुनिया में जाओ, हमें बाबा के जितने भी घर हैं वहां पे मां का प्यार ही मिलता है। ओम शांति।
लक्ष्मी तू है, दुर्गा तू है, घर घर में बसती तू। लक्ष्मी तू है, दुर्गा तू है, घर घर में की तू। एक एक